والله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سورة انعام کی تفسیر ہم جاری رکھیں گے، اس میں جو رمضان المبارک کی تفسیر کلاس ہماری آج کل چل رہی ہے، اس میں معارف و مسائل پڑھ رہے تھے ہم، آیت نمبر 68 سے 73 تک تھے، تو وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہم پیج نمبر 374 کے اوپر تھے، آپ کے سامنے اسکرین پر بھی وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈسپلیڈ ہوگا کہ جس کو کہ ہم بھی پڑھ رہے تھے. تو اس میں ہم نے کل بات کری تھی کہ بلکہ نہیں، یہ 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 ایکچولی ہم نے یہ مکمل کر لیا تھا کل پڑھ کر کے، سوری. ٹھیک ہے، جو اسکرین شیئرنگ کرتی ہیں خواتون یا جو بھی یہاں پہ کوآرڈینیٹر بات کریں ان سے معذرت کے ساتھ، ہم آگے کی آیات جو ہے نا وہ اب پڑھنا شروع کر رہے ہیں. پیچھے کے بس میں نے ایک چھوٹی سی ایک دو باتیں ریکیپ کرنی تھیں، وہ ہم مکمل کر چکے تھے کل. ٹھیک ہے، تو آگے کی آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 3 سے، اور ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں یہ آیات نمبر 74 سے 81 یعنی 74 سے 81 نمبر کی آیات ہیں. تو جیسے کہ ہمارے اس کلاس کا طریقہ ہے کہ اس میں ہم پہلے آیات کی تلاوت جو پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دفعہ پورا مجمع جو معارف القرآن کے اندر گروپ کی شکل میں آیات لکھی ہوتی ہیں تو ان سب کو پڑھ لیتے ہیں عربی کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا خلاصہ تفسیر پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معروف و مسائل. ٹھیک ہے، آج ساری آیات تلاوت کر لیں، کل سے جو ہے وہ شاید ایک دو آیات پڑھ کر کے پھر اس کے بعد الی الآخر کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ترجمے کی طرف آ جائیں گے. तो आज हमने तिलावत जो करी है तो उनका तर्जुमा हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आदत से मजबूर कि पीछे का थोड़ा सा रिकैप भी करना जरूरी समझते हैं कि कल जो हम बात कर रहे थे आखिरी बात जो पिछली आयत की तफसीर में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखी थी कि मुसलमान को बुरे माहौल और बुरी सोहबत से बचाना, वो पिछली आयत का हासिल था। ठीक है, क्योंकि बुरा माहौल और बुरी सोहबत जो है वो इंसान के लिए जहरे कातिल होती है। ठीक है, हम अपने आप को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, हम अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना वो इस बात पर इत्मीनान दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बुरी सोहबत से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुरी सोहबत से मेरे बच्चों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी पक्का हूं, मैं भी पक्की हूँ, मेरे बच्चे भी पक्के हैं, मेरे बच्चे भी पक्की हैं, मेरी बच्चियां भी पक्की हैं। ठीक है, हम पक्के हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला है, बुरी सोहबत हमारा नहीं बिगाड़ सकती, मेरे बच्चों का बुरी सोहबत नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, जो बिगड़ गया वो एक्सेप्शन था। हम क्या कहते हैं कि जो बिगड़ गया वो एक्सेप्शन था। क्या ख्याल है, जरा मैं क्लास से फीडबैक भी ले लूं थोड़ा सा ना, कि क्या ऐसा नहीं है कि जो बिगड़ गया वो एक्सेप्शन था और रूल ये है कि हम पक्के हैं, रूल ये है कि बुरी सोहबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या ऐसा नहीं है जी? हम यही समझते हैं, जो बच गया वो एक्सेप्शन है। नहीं, आप समझते होंगे ना, लेकिन अक्सरियत ऐसी नहीं है ना। हम यहाँ पे अक्सरियत की बात कर रहे हैं, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, ये भी एक उसूल है कि अक्सरियत के ऊपर कुल का हुक्म लगाया जाता है। ठीक है, तो कुल का हुक्म जो है ना वो इसी पे लगाया जाएगा कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, हम पक्के हैं, हम बहुत अच्छे हैं और बुरी सोहबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो बिगड़ गया वो एक्सेप्शन था, वो उसके अपने कुछ एक्सेप्शनली कुछ खराब मामलात थे, कुछ गड़बड़ थी, कुछ ये था, कुछ वो था, लेकिन दिस इज नॉट द रूल, दिस इज नॉट द रूल। लेकिन कुरान अजीम शान, पता नहीं किसकी किताब है ये कुरान, आपका क्या ख्याल है, किसकी किताब है ये कुरान, किसका कलाम है ये कुरान? किसी सुपरमैन का है ना, किसी वोल्ट्रैन का, वोल्ट्रैन नाम है उसका, एक तो दवा का नाम भी वोल्ट्रैन है, लेकिन शायद कोई वो कार्टून कैरेक्टर भी है जिसको बहुत पावरफुल होता है वो नेचर। हाँ, वो याद है, बचपन में देखा था कि छोटे छोटे कुछ सुपर हीरोज थे, एक का नाम था वाटर, एक का नाम था जो है वो फायर, एक का नाम था शायद अर्थ, ठीक है, और एक का नाम जो है वो शायद एयर था। ठीक है, ये सुपर हीरोज थे, और ये सुपर हीरोज जो है ना जब कोई बड़ी मुसीबत आती थी ना तो ये मिल करके एक एक बिगर हीरो बन जाते थे, उसका नाम शायद वोल्ट्रैन था। ठीक है, तो कैप्टन प्लैनेट बन जाते थे। हाँ, कैप्टन प्लैनेट तो बाद में आया था, हमारे बचपन में कैप्टन प्लैनेट वाला कार्टून नहीं आया था। ठीक है, तो हमने खुदा को यही समझ रखा है कि ये नेचर की पावर्स जो है ना ये मिल करके खुदा बन गई है बस, ये पता नहीं कोई कार्टून कैरेक्टर है ये कोई। ठीक है, तो कुरान उस कार्टून कैरेक्टर की किताब है क्या? नाउज बिल्ला, सुम्मा नाउज बिल्ला। ठीक है, ये खालिक की किताब नहीं है, ये कादिर की किताब नहीं है, ये पता नहीं किसी ने अपना फलसफा बयान किया हुआ है, तो भाई ठीक है, वी डोंट एग्री विद दैट फलसफा, कोई जरूरी तो नहीं है कि हम उससे एग्री भी करें। ठीक है ना, हर बंदे का अपना अपना फलसफा है, तो उसका फलसफा ये है, हमारा फलसफा कुछ और है। तो हमारा फलसफा ये है कि नहीं, कुछ नहीं होता बुरी सोहबत से, और कुरान अल्लाह की किताब, राइट, जो कि खालिक है, और हमारे यानी खाली हमारी बोटियों का खालिक नहीं है, राइट, हमारी हड्डियों का खालिक नहीं है, बल्कि हमारे मिजाज का भी खालिक है, हमारे जहन का भी खालिक है, हमारी रूह का भी खालिक है, हमारी जो है ना वो जितनी सलाहियतें हैं वो सलाहियतों का भी खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और खाली खालिक नहीं है बल्कि उसी को जो है वो सस्टेनर, उसको सस्टेन करने वाला, आगे चलाने वाला भी अल्लाह है। ठीक है, हम ये अल्लाह को नहीं समझते, अल्लाह को कोई नाउज बिल्ला को एक एक, एक बिगर सुपर हीरो समझ लेते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा इतना ही उसको क्रेडिट देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो अपने कुरान मजीद के अंदर हमें कैसे कैसे समझा रहे हैं, और फिर हमारे मशाइख के वास्ते से हमें मजीद हमारी जुबान के अंदर भी उस बात को कैसे कैसे समझा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से भी हमें उसकी ताईद मिल रही है, एक्सप्लेनेशन मिल रही है। ये बुरी सोहबत जो है, ये उसूल है कि बुरी सोहबत के बाद इंसान नहीं बचता, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा मेस्ड अप हुई हुई हैं कि हम इसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और अपने आप को जो है ना वो इससे मुबर्रा समझना शुरू कर देते हैं, अपनी औलादों को इससे मुबर्रा समझना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होता, हमारी औलादों को कुछ नहीं होता। ठीक है, तो भाई ये तफसीर जो है ना, ये अल्लाह ताला के कलाम की तफसीर है, अल्लाह ताला के कलाम की समझ है इसके अंदर। ठीक है, तो अल्लाह ताला का उसूल बताया हुआ यही है कि बुरे माहौल और बुरी सोहबत जो है ना, ये जहर कातिल है। ठीक है, कोई नहीं बचता इससे, जो बचता है तो वो एक्सेप्शन होती है, और वो एक्सेप्शन भी कल समझाया था कि किसी वजह से होती है, वरना वो एक्सेप्शन भी ना हो, वरना वो एक्सेप्शन भी ना हो, कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन होती है, वरना एक्सेप्शन नहीं हो, सिर्फ रूल ही रूल हो, बस कि बस बिगड़ना है, बच्चे ने बिगड़ना है बुरी सोहबत की वजह से। ठीक है, तो अब हमें बेवकूफ़ी की बातें बंद करें, अपनी बेवकूफ़ी की बातें, अजीब क्या कहते हैं वो कॉलेज की लड़कियां कहती हैं ना, ऑक्सीमोरॉन, समझते हैं ना ऑक्सीमोरॉन का क्या मतलब होता है, यानी बिल्कुल ही जो है ना वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, अजीब गरीब किस्म की जो है वो बस ना कोई तुक, ना ना कोई सर, ना कोई पैर, ना कोई अकल की कोई रत्ती भी बिल्कुल, लेकिन लगे हुए हम अपने उसके अंदर बेवकूफ़ी की बातों के अंदर। तो भाई बुरी सोहबत से नहीं बच सकते हैं यार, तो अपने आप को समझते हैं पता नहीं क्या, लेकिन ये आपका धोखा है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फरमाया कि जहां तक गौर किया जाए, इंसान को इस हालत पर पहुंचाने वाली चीज अक्सर उसका गलत माहौल और बुरी सोहबत होती है। अक्सर का लफ्ज भी समझाया था कि वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस की वजह से यहाँ पे अक्सर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वरना तो दिस इज द रूल। ठीक है, नऊज़ बिल्लाही मिन हुमा, इसीलिए बच्चों के मुरब्बियों का फर्ज है कि बच्चों को ऐसे माहौल और सोसाइटी से बचाने में पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो अब उसके लिए कोशिश करें ना, उसके लिए इल्म हासिल करें, उसके लिए जो है वो ऐसे लोगों के पास आना जाना शुरू करें जो कि इस बात को समझते हैं, मानते हैं, वरना फिर हम हकीकत का कुफर करने वालों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, हकीकत का कुफर करने वाले, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि लहुम शराबुम मिन हमीम व अजाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून, कि उनके लिए गरम खौलता हुआ पानी होगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। किस वजह से? बीमा, फॉर व्हाट रीजन, बीमा का मतलब होता है इस वजह से कि कानू यकफुरून, उन्होंने नसीहत करने वाले की नसीहत का इनकार किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था नहीं, तुम बकते रहो, तुम बोलते रहो, तुम अपना सर पीटते रहो, तुम जो है वो तरह तरह से बात को समझाने की कोशिश करते रहो, लेकिन मैं ना मानू, मैं ना मानू, याद है ना, किसी किसी के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में हमारे यहाँ कहा जाता था, लेकिन वो हमारी पूरी कौम पे अप्लाई होता है, मैं ना मानू, मैंने नहीं मान करके देनी है तुम्हारी बात। ठीक है, तो ठीक है मत मानो, लेकिन फिर अल्लाह ताला भी तुम्हें दिखाएगा, तुम जिसको एक्सेप्शन समझते हो ना वही रूल बन जाएगा, और फिर तुम्हारी लग पता जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा फिर। अच्छा, ये सब तो ये तो बातें हो गई, पिछले आयात के बारे में एक रीकैप हो गया। ठीक है, आगे जो है ना, ये जो अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं, आगे अल्लाह ताला फिर क्या फरमा रहे हैं, ये अजीब, जो लोग माशाल्लाह अरबी जुबान थोड़ी बहुत सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, या जो माशाल्लाह आलिम हैं या आलिमात हैं, या जो माशाल्लाह हमारे साथ जो है वो काफी अरसे से जुड़े हुए भी हैं और हमारे प्रोजेक्ट से भी वो वाकिफ हैं, ठीक है, यानी अरबी जुबान की भी थोड़ी बहुत समझ है उनके अंदर, कुरान मजीद में जो अभी हमने अभी तिलावत की थी आयात, उन आयात की तिलावत करने में ही उनको कुछ बात समझ में आ गई कि इन आयात के अंदर क्या बात हो रही है। ठीक है, तो उनसे एक सवाल है आज इसका, ठीक है, उनसे एक सवाल है आज इसका, कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अब क्या बता रहे हैं, जिसका क्या ताल्लुक है पीछे वाली आयात के साथ। पीछे वाली आयात के साथ इसका क्या ताल्लुक है। अच्छा, पीछे वाली आयात में भी कौन सी वाली बात जो अल्लाह ताला ने फरमाया था, वज़र लजीन तखदु दीन हम लबों हयात दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसल नफ्सुन बिमा कसबत, और नसीहत करते रहिए उनको कुरान से, वरना वो अपने गुनाहों के अंजाम में गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया था वज़क्किर बिही, ये गोया के पीछे पीछे जो आयात हमने पढ़ी थी ना, उनका ये सेंटर पॉइंट था, उनका ये सेंट्रल आइडिया था। ठीक है, और यही बात पीछे वाली आयत के अंदर भी फरमाई थी, उससे पिछले वाली आयत में, वमा अलल्लज़ीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तकून, के जो तकवा वाले लोग होते हैं ना, तो उनके ऊपर बुरे लोगों की बुराइयों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बुरे लोगों की बुराइयों का उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, लेकिन ज़िक्रा नसीहत करने का बोझ है, नसीहत करने का बोझ है तकवा वालों के ऊपर। ये अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि वो नसीहत करें, वलाकिन ज़िक्रा, लेकिन ज़िक्रा, ज़िक्रा का मतलब होता है नसीहत करना। और फिर अगली आयत में फरमाया कि वदक्किर बिही अन तुबसल नफ्सुन बिमा कसबत, कि उनके साथ खैरख्वाही की नीयत के साथ तुम नसीहत करते रहो। ठीक है, तो अब जो है वो आगे जो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, व इज क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा से लेकर के आखिर तक, तो अब क्या क्या बता रहे हैं इस इन आयात के अंदर, जिसका ताल्लुक पिछले ग्रुप ऑफ आयात के सेंट्रल आइडिया के साथ है। ठीक है, तो जो लोग माशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स के भी हिस्सा हैं, तो फिर उनसे एक सवाल है कि ये कौन से वाले प्रोजेक्ट की बात हो रही है इधर। पूरी क्लास से बेशक ये सवाल नहीं है, लेकिन कम से कम जो है उनसे तो मुश्किल सवाल है। आई नो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए समझाना इतना मुश्किल काम है, तो फिर आपके लिए समझना तो और भी मुश्किल होगा। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी, और बिल्कुल सही जवाब आ गया मर्दों की साइड से, तो बिल्कुल सही जवाब आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली, औरतों के साइड से भी बिल्कुल सही जवाब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, ये आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आगे अल्लाह ताला एक केस स्टडी, एक प्रैक्टिकल मिसाल, एक रियल मिसाल जो है वो बयान कर रहे हैं, किस चीज की, बलागुल मुबीन की। बलागुल मुबीन के कैसे तुम नसीहत को अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में आगे पहुंचाओ, कैसे पहुंचाओ, उसकी एक केस स्टडी है। कौन सी, किसकी केस स्टडी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की केस स्टडी है। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की केस स्टडी है कि देखो ऐसे तुमने बात करनी, ये तुमने बातों का ख्याल रखना। ठीक है, तो अब उसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल सही सही जवाब सबने दिए कि नसीहत करो जिसको वो मानते हैं, यानी उनकी जो जो तुम्हारे और उनके दरमियान एग्रीड अपॉन बातें हैं ना, उनको इस्तेमाल करते हुए उनको नसीहत करो। ठीक है, उन तक बात पहुंचाओ, बलाहुल मुबीन, कॉमन ग्राउंड को यूज करते हुए। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क से रोक रहे हैं, और खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीख कर दूसरों को सिखा रहे हैं। नहीं, सीख कर नहीं सिखा रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले सिखाया हुआ है, पहले यानी उन्होंने अल्लाह ताला से सीख लिया, अल्लाह ताला ने उनको सिखा दिया है, अब जो है वो आगे लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन कैसे सिखा रहे हैं ये अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं। तो फरमाया वह इज कला इब्राहिम, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी इज का जो लफ्ज इस तरह से इस्तेमाल होता है ना, और एक वाकया बयान करते हैं अल्लाह ताला, तो इसका मफहूम ये बनता है कि याद करो उस वक्त को जब कहा इब्राहिम ने। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज क्या है, और जब इब्राहिम ने कहा, तो भाई क्या मतलब जब इब्राहिम ने कहा, तो फिर याद करो उस वक्त को, यानी ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा ऐसे कहा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब याद करें वो टाइम जिस वक्त आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे, और जो है वो उनको आप सुन रहे थे कि जब वो ये बात कह रहे थे। नहीं, बल्कि हम आपको बता रहे हैं एक वाकया, आप उस वाकये को याद रखें, आप उस वाकये को याद रखें कि देखो इब्राहिम ने ऐसे बात करी थी। ठीक है। तो यहां पर अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम को सिखा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की केस स्टडी को यूज करते हुए, और नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ताला मुझे और आपको भी सिखला रहे हैं, मुझे और आपको भी सिखला रहे हैं कि देखो तुमने ऐसे जो है वो दावत तबलीग का काम करना, ठीक है, ऐसे दावत का काम करना है। तो फरमाया हुआ इज कला इब्राहिम, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ले अभी ही अपने अब्बू अब्बू जी से, क्या मतलब, जैसे यहाँ पे मर्दों में जवाब आया था कि सबसे पहले अपने घर से दावत शुरू करनी है, अमेरिका से नहीं शुरू करनी, राइट, ऑस्ट्रेलिया से नहीं शुरू करनी, चाइना से और जो है वो अफ्रीका से नहीं शुरू करनी, अपने घर से शुरू करनी है। हमारी दावत भी शुरू होती है ना गैरों से शुरू होती है, भाई शुरू अपनों से करो फिर अपने तुम्हें दिखाएंगे ठेंगा। ये भी सुन लो, ये भी याद रखो कि शुरू तो तुमने अपनों से ही करनी है, लेकिन अपनों ने तुम्हें क्या दिखाना है, अपनों ने तुम्हें ठेंगा दिखाना है, ठीक है ना, और ये ठेंगा तुम्हारा देखना भी लाजमी है, तुम यू हैव टू गो थ्रू दिस, यू विल हैव टू गो थ्रू दिस। अपने तुम्हें जो है ना वो लान तान करेंगे, बोलेंगे जैसे मेरे हबीब को बोला तब्बन लका या मोहम्मद, तब्बन लका या मोहम्मद, ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए। किसने कहा था ये वाली बात, किसने कहा था, खैरुल बशर को उनके अपने सगे चचा ने कहा था। वो ऐसा सगा चचा था जिसने अपने दो बेटों की शादी नबी अलैहिस्सलाम की दो बेटियों से कर दी थी, यानी कोई ऐसा नहीं था दूर दराज का कोई जो है वो ऐसे ही जिसका कोई खास ताल्लुक ना हो, इतना गहरा ताल्लुक था, इतनी मोहब्बत थी कि जिस दिन बेटे की अपने भतीजे की पैदाइश का पता चला अपनी बांदी को आजाद कर दिया। और बांदी को आजाद कर देना ऐसे ही है कि जैसे कि आप जो है ना वो अपनी मर्सिडीज कार को जो है वो सस्ते में दे दें, राइट, मर्सिडीज हो, बेंज हो, बीएमडब्ल्यू हो, बहुत ही कोई लग्जरी किस्म की आपकी गाड़ी हो उसको उठा करके आप सदके में दे दें। उसने अपनी बांदी को आजाद कर दिया, इतना बड़ा उसने जो है वो माली भी नुकसान बर्दाश्त किया। किस खुशी में ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, ऐसा था वो चचा। और उसने क्या, जब नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया कि छोड़ो इन बुतों को और एक अल्लाह की इबादत करो, उसने कहा तुम्हारे हाथ टूट जाए, यानी उनके मुहावरे में इसका मतलब था कि तुम बर्बाद हो जाओ। तुम उसी के ऊपर फिर सूरत नाजिल हुई तब्बत यदा अभी लहबी हूं तब, ठीक है, तो दावत शुरू करो अपनों से और फिर तैयार रहो कि अपनों ने तुम्हें फिर ये सब सुनाना है, ठीक है, अपनों ने तुम्हें लड्डू नहीं खिलाने हैं। हाँ एक आध तुम्हारी बात मानेंगे भी, जैसे खदीजा रतान ने बात मानी, अली रतान ने बात मानी, बाकी सब जो है ना वो उन्होंने नहीं मानी तुम्हारी बात। शुरू तुमने अपनों से ही करना है बच्चों, ठीक है, शुरू अपनों से करो, फिर जब वो तुम्हें ये कहेंगे फिर उसके बाद तुम दूसरों से भी बात करो, फिर जा करके फिर दूसरों तक भी दावत लेकर के जाओ, फिर गैर जो है वो तुम्हारी दावत को कबूल करेंगे और फिर हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हारा माहौल बना देंगे, निज़ाम बना देंगे, ठीक है। तो काल इब्राहिम ले अबी आजर, ठीक है, उनका नाम जो है वो आजर था, बाप का नाम, और बाकी इसकी तफसील आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या फरमाया काला में, क्या फरमाया, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, क्या तुमने बनाया हुआ है असनाम को, सनम कहते हैं बुत, ठीक है, बुत, क्या तुमने बुतों को इलाह बनाया हुआ है, इलाह यानी जिसकी इबादत की जाती है, इबादत क्या चीज होती है, उलूहियत, राइट, इबादत जिसकी इबादत की जाती है उसको इलाह कहते हैं, इबादत जो है ना ये मोहब्बत की आखिरी शक्ल होती है, इंतहाई शक्ल, जब मोहब्बत पहुंच जाती है अपनी एक्सट्रीम शक्ल को तब वो इबादत कहलाती है, ये है इबादत। हम कौन सी इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, मोहब्बत का पता भी कुछ नहीं हमें कि ये क्या चीज़ होती है, और हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की, मोहब्बत के लफ्ज़ से भी वाकिफ नहीं, मोहब्बत की फीलिंग से भी वाकिफ नहीं, मोहब्बत की वजह से भी वाकिफ नहीं, और हम सो कॉल्ड इबादत करे चले जा रहे हैं अल्लाह की विदाउट मोहब्बत। नहीं भाई, इबादत तो मोहब्बत की एक्सट्रीम फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। तो तुमने अपनी एक्सट्रीमिटी ऑफ मोहब्बत जो है वो तुमने इन बुतों को दी हुई है, अतत्तखिदु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिन मुबीन, मैं तो देख रहा हूं, बेशक मैं इन्नी, बेशक मैं अरा का देखता हूं तुमको, वह कौम का और तुम्हारी कौम को, फी दलाल मुबीन, खुली गुमराही के अंदर, जहां बलागुल मुबीन की बात हो रही थी, यहां पर दलाल मुबीन, खुली गुमराही के अंदर, बिल्कुल एब्सोल्युटली कंफर्म्ड गुमराही। ठीक है, बाकी तफसील आगे पढ़ेंगे इसकी तफसील के अंदर इंशाल्लाह। वकदालिका, और इसी तरह से, नुरी इब्राहिमा, हमने दिखाई इब्राहिम को। ठीक है, अल्लाह ताला तो एक है, तो यहाँ पर हम का सीगा क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अरबी के मुहावरे के अंदर, बल्कि दूसरी लैंग्वेजेस के भी जो इस्तेमाल होता है उसके अंदर, जब कोई बड़ा अपने बारे में बात करता है तो वो प्लूरल का सीगा इस्तेमाल करता है, इससे वो प्लूरल हो नहीं जाता, रहता तो वो सिंगुलर ही है, लेकिन ये सीगा है, ये एक इस्तेमाल है लैंग्वेज का। ठीक है, और अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि अरबी लैंग्वेज को अपने कुरान के लिए इस्तेमाल किया, तो अरबी लैंग्वेज का मुहावरा पहले बनाया, ये नहीं कि अरबी पहले बनी थी फिर अल्लाह ताला ने कुरान बाद में बनाया, नहीं, अल्लाह ताला ने अरबी भी बनाई, अल्लाह ताला ने कुरान भी बनाया, आधा काम अल्लाह आधा काम इंसान, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अरबी के मुहावरे बनाए, फिर उसी मुहावरे के अंदर जो है वो अपने कुरान मजीद को जो है वो नाजिल भी फरमाया। तो हमने दिखाए इसी तरीके से किसको, इब्राहिम को, मलकूत समावात वल अर्द, अजायबात। ठीक है, यहाँ पर मलक का जो लफ्ज है ये फरिश्ते के लिए नहीं है, फरिश्ता भी वैसे एक अजीब चीज है कि नूर का बना हुआ है और हमें नजर नहीं आता है और उसकी जो है वो ऐसे ऐसे आमाल कर जाता है लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता किसी को, वो भी एक अजूबा है हम जैसे इंसानों के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फरिश्ते मुराद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की और भी ऐसे अजायब जो है, जो कि आसानी से समझ में नहीं आए किसी को, तो वो सारे अजायब जो है ना, हमने आसमानों के और जमीन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाए, ये इल्म दिया अल्लाह ताला ने, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था अस्मा का, चीजों के नामों का और चीजों की हकीकतों का, उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मलकूत समावाती वाल अर्द का इल्म दिया, खलील थे ना आखिर को। ठीक है, तो खलील को कुछ एक्सेप्शनल, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नॉलेज दी जा रही होती है, ब्लेसिंग्स दी जा रही होती है। ठीक है, वा लियकून मिनल मुकिनीन, ताके, ये वाओ का तर्जुमा तो और से करते हैं लेकिन यहाँ पर के यानी वजह बयान कर रहे हैं, क्योंकि लाम जो है वो वजह के लिए इस्तेमाल होता है, लाम एक कई भी इसको कहते हैं, उर्दू में हम इसका तर्जुमा ताके से करेंगे, यकूना वो हो जाए, मुकिनीन में से, मुकिनीन यकीन करने वाले। ठीक है, एक होता है एतमाद करना, एतमाद करना भी जो है वो ऐसे ही होता है कि आपने बजाहिर अपने सेंसेस से किसी चीज को नहीं देखा होता लेकिन किसी के कहने के ऊपर आप उसकी बात पे एतमाद कर लेते हैं, और यकीन इस एतमाद का हायर दर्जा है, एडवांस दर्जा है, कि आप इतना एतमाद करते हैं कि अब जो है ना वो बिल्कुल उसके अंदर जो है वो डाउट की कोई पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, और ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आप खुद उस चीज को देख रहे हैं, खुद उस चीज को फील कर रहे हैं, हालांकि आप खुद उस चीज को देख नहीं रहे, फील नहीं कर रहे, लेकिन आपका एतमाद इतना पक्का हो गया, ऐसे पक्के एतमाद को यकीन कहते हैं। ठीक है, तो ये यकीन कैसे आता है, मुशाहिदे से आता है, लेकिन क्यों आता है ये यकीन, क्यों आता है, क्योंकि पहले आपने एतमाद किया होता है, इस एतमाद के ऊपर आपको इनाम मिलता है कि आपको मुशाहिदा भी करा दिया जाता है, इनाम होता है ये मुशाहिदा, किस चीज पर इनाम मिल रहा है, एतमाद करने पर इनाम मिल रहा है। ठीक है, तो अब जब मुशाहिदा करा दिया तो मुशाहिदे का ऑटोमेटिक अंजाम क्या होता है, यकीन मिल जाता है, अब पक्का ठक्का मामला हो जाता है फिर। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपने अंबिया को जो है ना वो यकीन के लेवल तक पहुंचाते हैं मुशाहिदात करवा करके, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी पहुंचाया, भाई उन्होंने आगे भी तो काम करना है ना। ठीक है, तो यकीन उनको मिलेगा तो फिर आगे काम करना उनके लिए आसान होगा, यही मामला हमारे साथ भी है कि जब हम एतमाद करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें भी मुशाहिदात करवाते हैं। ठीक है ना, बेशक उस दर्जे के मुशाहदात नहीं करवाते जिस दर्जे के मुशाहदात अंबिया को करवाए थे, लेकिन मुशाहदा करवाते हैं, और मुशाहदा करवाने से फिर क्या होता है कि फिर हमारा भी ईमान यकीन में तब्दील हो जाता है, हमारा भी एतमाद यकीन में तब्दील हो जाता है, अब जो है ना वो आप एक सॉलिड ग्राउंड पे खड़े होकर के दीन का काम कर रहे हो, लेकिन इसके लिए पहले एतमाद होना शर्त है, वो हमारा करने का, एतमाद करना, यकीन दिलवाना, ये अल्लाह का काम है। एतमाद करना की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली, यकीन दिलवाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रखी है। वो मैं मुशाहदे करवाऊंगा, फिर तुम्हें यकीन मिल जाएगा, लेकिन तुमने क्या करना है, तुमने ईमान लेकर के आना है, एतमाद करना है, ठीक है। फलम्मा जन्न अलैहि लैलु रआ कौकबा, बस जब, लम्मा का तर्जुमा जब से करते हैं, जन्ना, जन्ना का मतलब होता है किसी चीज को ढांक देना, कवर कर देना, ठीक है। इसी वजह से जो जुनून का जो लफ्ज उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जुनून में किसी की अकल जो है ना वो मغلوب हो जाती है, ढक जाती है, तो वो जुनून, जुनूनी कैफियत में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अकल जो है ना वो अंडर कवर चली गई है, अब वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो इसको जुनूनी कैफियत कहते हैं। तो जन्न अलैहि, जब उसके ऊपर ढांप दी गई, किसके ऊपर, लैल, ठीक है, तो लैल जो है ना वो उसके ऊपर यानी ढप गई, रआ कौकबा, फिर उसने देखा कौकब को, यानी जब रात आ जाती है तो गोया के वो पूरे की पूरी जो है ना वो माहौल को ढांप लेती है अंधेरे से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तो उस माहौल के अंदर ही मौजूद थे ना, यानी जब रात आती है तो फिर आप कहाँ होते हैं, आप भी तो रात ही में होते हैं ना, ठीक है। तो जब रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आ गई तो हर चीज डार्क हो गई, जब हर चीज डार्क हो जाती है तो फिर क्या होता है, सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब तो दिन में रोशनी इतनी, अब रात में अब तो आर्टिफिशियल लाइटिंग इतनी होती है कि आपको सितारे नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन जरा सा डेजर्ट में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, जहां पे जमीन पे कोई लाइटिंग ना हो, फिर देखें ऊपर कितने सितारे नजर आते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर सितारे नजर आए, रा कौकबा, उन्होंने कौकब को देखा, कौला आदा रब, उन्होंने कहा ये मेरा रब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बज़ाहिर तो देखें कुरान मजीद के अंदर नहीं लिखा हुआ कि वेदर ही वॉज ऑल बाई हिमसेल्फ, ऑल अलोन, या इनके साथ दूसरे लोग भी थे, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये अपने आप में बातें कर रहे थे या ये दूसरे लोगों से बात कर रहे थे। तो ये फिर तफसीर से, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम ने बात बताई या उलमाए उम्मत ने जो है वो दीगर कराइन की रोशनी में बात को समझा, तो फिर उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज नॉट टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ही वाज नॉट टॉकिंग टू हिमसेल्फ, क्या अपने आप में बोले चले जा रहे हैं ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, नहीं, बल्कि वो सुना रहे थे, उनके साथ दूसरे लोग भी थे और वो दूसरे लोगों को एक्चुअली ये सुना रहे थे अपने अल्फाज, तो उन्होंने कहा हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला कालला उहिब्बुल आफिलीन, बस जब अफला वो गायब हो गया, अफला का मतलब होता है डूब जाना, गायब हो जाना, ठीक है, डूब जाना बेसिकली, तो जब वो गायब हो गए यानी ये कौकबन जो है ना ये गायब हो गए, ठीक है, अगरचे कि ये वाहिद का सीगा है, लेकिन जो ऐसी जमा चीजें होती हैं जो कि गैर आकल कहलाती हैं, जो गैर आकल, जैसे सूरज सितारे जो हैं, ये कोई इंसान और जिन तो है नहीं, ये तो गैर आकल मखलूक कहलाती हैं, तो इनके लिए जो है वो वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है। तो कोई एक सितारा खाली नहीं था, बल्कि बहुत सारे सितारे थे, वो सारे के सारे डूब गए। भाई जब दिन आ जाता है, जब दिन की रोशनी नमूदार हो जाती है, तो सितारे गायब हो जाते हैं ना, सारे के सारे निगाहों से गायब हो जाते हैं, अपनी जगह से तो गायब नहीं होते, निगाहों से गायब हो जाते हैं, तो वो डूब गए। तो काला, उन्होंने कहा ला उहिब्बुल आफरीन, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता, ला उहिब्बुल आफरीन, अल्लाह अकबर कबीरा, राइट। यहाँ पर मोहब्बत का मसला कोई थोड़ी था, ये कोई थोड़ी कि वो जो है वो तो उनकी कौम के लोग थे जिनको ये दावत दे रहे थे, तो उनकी कौम के लोग जो हैं वो सितारों से मोहब्बत करते थे, राइट, जिसको हम मोहब्बत समझते हैं कि गोया के रातों को जागता हूँ तुम्हारे ख्याल में, लोगों से पूछ लो मेरी रुदाद जिंदगी, तो वो रातों को जाग रहे हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं उनकी मोहब्बत में, और ये कुछ थोड़ी करते थे वो लोग। वो क्या करते थे, वो तो इबादत करते थे, इन सितारों की वो इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ इन डूबने वाली चीजों से, यानी मैं इन सितारों से मोहब्बत नहीं करता, तो भाई मैं इबादत नहीं करता, ये क्यों नहीं कहा उन्होंने, ये क्यों कहा कि मैं मोहब्बत नहीं करता? इसलिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि इबादत भी दरअसल मोहब्बत ही होती है, इबादत भी दरअसल मोहब्बत ही की एक्सट्रीम फॉर्म होती है। तो क्या मतलब हुआ कि जिसके अंदर मोहब्बत ना हो तो फिर वो इबादत कैसी इबादत है भाई? वो इबादत कैसी इबादत है कि जिसके अंदर मोहब्बत ही नहीं, मारे बांधे की हो रही है? या मारे बांधे की नहीं हो रही तो जो है वो गोइंग विद द फ्लो, सब उधर जा रहे हैं तो हम भी उधर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए हम भी उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं चक्कर काटने के लिए तो हम भी चक्कर काटने के लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं मस्जिद तो हम भी मस्जिद जा रहे हैं, सब सब जो है वो उठक बैठक कर रहे हैं तो हम भी उठक बैठक कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो लोग ताने देंगे, नहीं करेंगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे कि ये देखो ये बैठी हुई है, ये नहीं उठक बैठक नहीं कर रही हमारी तरह से, उठक बैठक नहीं कर रही। तो इस वजह से लोगों की लोगों के तानों से बचने के लिए मैं भी उठक बैठक कर लेती हूँ, मैं भी जो है वो चक्कर काट के आ जाती हूँ। ठीक है ना, हमारी इबादतें जो है ना वो हकीकत में ऐसी है अल्लाह की मोहब्बत से खाली, क्योंकि मोहब्बत से रूशनास रूशनास ही नहीं हम, मोहब्बत के हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो भाई ये तो इबादत नहीं होती ना, फिर ये तो उठक बैठक या चक्कर काटना होता है, इसी वजह से चक्कर भी काट रहे होते हैं और चक्कर दे भी रहे होते हैं, राइट? चक्कर काट भी रहे होते हैं और चक्कर दे भी रहे होते हैं एक दूसरे को, यानी जिसके घर के अगर चक्कर काट रहे हैं उसी के हुक्म के खिलाफ लोगों को चक्कर दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारी इबादत में मोहब्बत नहीं होती। ठीक है, तो अल्लाह ताला से अल्लाह की मोहब्बत हमें मांगनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला देंगे हमें, ठीक है, सिखाएंगे मोहब्बत। ठीक है, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह ताला डिफाइन करते हैं कि वो तो वो हैं जो कि अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं, और हम तो मोहब्बत से वाकिफ ही नहीं। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज यहां पर कहलवाया, ला उहिब्बुल आफिली, हालांकि बात तो इबादत की हो रही थी तो मोहब्बत का लफ्ज क्यों कहलवाया? हमें याद दिलाना चाहते हैं कि देखो मोहब्बत ही इबादत होती है और इबादत तो मोहब्बत ही होती है, राइट? आगे फरमाया, फलम्मा रअ अल कमरा, बस जब उसने देखा कमर को यानी चांद को, बाज़िगन चमकता हुआ, ठीक है, यानी राइज, ये बाज़िग का जो लफ्ज है चमकता से भी इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है उर्दू के अंदर, इसको जो है वो यानी बढ़ता हुआ, राइज करता हुआ, ठीक है, क्योंकि चांद जो है ना, आपने कभी अगर गौर किया हो, इतना तो वैसे किसी के पास जाहिर टाइम नहीं होता कि छत पे जा करके जो है वो चांद को ऑब्जर्व करें कि जी ये कहाँ था अब कहाँ पहुंच गया, तो चांद लिटरली राइज करता है आसमान के ऊपर, जिस तरह सूरज तुलू होता है ना उसी तरह से चांद तुलू होता है, ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे फिक्स हो, दिन में नजर नहीं आ रहा था रात में वो नजर आना शुरू हो गया, लेकिन वो एक जगह फिक्स है, नहीं वो फिक्स नहीं होता, वो लिटरली तुलू हो रहा होता है। ठीक है, तो बाज़िगन का लफ्ज़ इस्तेमाल, जब उन्होंने चांद को देखा तुलू होता हुआ, काला हाज़ा रब्बी, फिर उन्होंने दूसरों को सुनाने के लिए ये अल्फाज कहे, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, बस जब वो गायब हो गया, जब सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता डॉन होना शुरू होता है, सहरी का वक्त शुरू होता है, चांद भी गायब होना शुरू हो जाता है, तो जब वो गायब हो गया, काला, उन्होंने कहा, लइन लम यन यहदिनी रब्बी, कि अगर ना हिदायत करेगा मुझको रब मेरा, लअकूनन्ना मिनल कौमिल ज़ालिमीन। अब ये अल्फाज नहीं कहे ला उहिब्बुल आफिलीन, भाई वो कह चुके, ठीक है ना, वो बात तो हो चुकी, अब नया नई बात करनी है अगले बंदे को जो है वो, और झंझोड़ने के लिए, मेंटली झंझोड़ने के लिए, इंस्पायर करने के लिए या इंस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, तो अगली बात क्या करी कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देता तो जरूर बिल जरूर ला अकूनन्ना, नामे ताकीद बा नून थकीला, डबल ताकीद के साथ फरमा रहे हैं कि जरूर बिल जरूर, अकूनन्ना, मैं जरूर बिल जरूर हो जाता गुमराह होने वाले लोगों की कौम में से, गुमराह होने वाले लोगों में से मैं हो जाता, ठीक है, यानी कि जो सीधे रास्ते के ऊपर है ना, तो इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो अल्लाह को दे दिया, अपने रब को दे दिया, अपने ऊपर नहीं रखा कि देखो मैं कितना तीस मार खान हूँ, कितना अकलमंद हूँ, कि मैं हकीकत तक पहुंच गया हूँ, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। वाह वाह वाह, क्या बात है मेरी, राइट, क्या बात है मेरी। नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मेरे रब की सारी बात है, ठीक है, सब मेरे रब का है, मुझे भी जो मिला है वो भी मेरे रब का है। तो ईमान वाला जो अल्लाह से मोहब्बत करे, क्योंकि क्योंकि ये मोहब्बत के ये उसूल यही होते हैं। अब आप किसी दुनिया वाले से मोहब्बत करें ना, आप किसी मखलूक से मोहब्बत करें, आप किसी इंसान से मोहब्बत करें, वहां पर भी यही चलता है, अच्छी बात का क्रेडिट उसको, क्योंकि असल मोहब्बत तो यही होती है। ये तो फिर मोहब्बत ही नहीं होती ना कि आप जो है वो माशाल्लाह बीवी से मोहब्बत भी कर रहे हैं और जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा कमाल है, जो अच्छा खाना बना तो ये तो मेरी वजह से अच्छा खाना बना, ठीक है, ये तुम्हारा, तुमने क्या क्या कमाल कर दिया इसके अंदर, मैं ही इतना अच्छा हूं कि तुम मेरे लिए अच्छा खाना बनाती हो, मैं अच्छा हूं असल में। तो फिर बीवी कहेगी भाई ये ऐसी मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए, जैसे ना वो अभी किसी ने लतीफा शायद भेजा था मुझे, तो बीवी साहिबा जो है वो शौहर से कहने लगी कि मैं आपके लिए अच्छा सूट लेकर के आती हूँ, मैं आपके लिए नहीं, मैं आपके लिए नया सूट लेकर के आई हूँ। तो शौहर ने कहा कि अच्छा दिखाएं तो सही, तो उन्होंने कहा मैं अभी पहन के आती हूँ। समझ में आई, मैं अभी पहन के आती हूँ, ठीक है, यानी जो अच्छा सूट लेकर के आई थी वो शौहर के पहनने के लिए नहीं लेकर के आई थी, वो भी अपने ही पहनने के लिए लेकर के आई थी, लेकिन जतला ऐसे रही है कि मैं आपके लिए नया सूट लेकर के आई हूँ। तो ये तो मोहब्बत नहीं होती ना भाई, भाई मोहब्बत होती है कि जो किसी और के लिए की जाए, वो किसी और से की जाए, फिर उसी को जो है वो आप अच्छाई का जो है वो क्रेडिट भी दे रहे हैं उसी को, ठीक है। तो ईमान वाले तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, इस वजह से जो अच्छा काम खुद करते
सोचा
हैं
तो चला जाऊंगा,
उसका
लेकिन
क्रेडिट
वो बोले
अल्लाह
थे कि रखना नहीं मिट।
दे, उसका क्रेडिट अल्लाह को देते हैं, और अल्लाह ताला भी, फिर अल्लाह ताला भी क्या, बल्कि अल्लाह ताला असल तो हकीकत है कि अल्लाह ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस मोहब्बत को फिर लौटाते भी हैं, ठीक है, कि जब ईमान वालों को जन्नत में दाखिल करेंगे ना, तो ईमान वाले तो कह रहे होंगे कि ए अल्लाह आपकी मेहरबानी की वजह से हम जन्नत में आ गए, लेकिन अल्लाह ताला उसके ऊपर जवाब देंगे नहीं मेरे बंदो, तुम तो अपने आमाल की वजह से जन्नत में जा रहे हो, तुम तो अपने आमाल की वजह से जन्नत में जा रहे हो, अल्लाह ने क्रेडिट वापस लौटा दिया ईमान वालों, ठीक है। तो ये होती है मोहब्बत, और ये हमारा दीन का असल यही है, हमारे दीन की बुनियाद यही है, हमारे दीन की बुनियाद जो है ना वो मारे बांधे की आमाल नहीं है, राइट, हमारे दीन की बुनियाद जो है वो, यानी असल बुनियाद जो है ना वो ये सब चीजें नहीं है, वो बाद की बातें हैं, बेशक वो हमारे दीन का हिस्सा है, वो बाद की बातें हैं, असल चीज तो मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत, और फिर अल्लाह की नस्बत से मोहब्बत, जिससे भी मोहब्बत करनी है अल्लाह की नस्बत से मोहब्बत करनी, ठीक है। तो ये खूबसूरत दिन है ना, फिर ये फिर आपको जो है वो खुद भी फिर काम का दीन बनता है ये, जब मोहब्बत उसमें होती है, और फिर दूसरों को भी फिर ये दीन समझाना आसान होता है, क्योंकि मोहब्बत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या इन्होंने लिखा कि जब मोहब्बत के बगैर इबादत ही नहीं तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं, अल्लाह ताला से मांगने के साथ साथ क्या अमल करना चाहिए, बराए मेहरबानी वजाहत फरमा दें। वजीफे पढ़ें आप, क्या मतलब क्या अमल करना चाहिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत मांगनी है भाई, और क्या, और फराइज पूरे करने हैं बस, ठीक है, कोई और इसके अलावा जादू टोना नहीं है, कोई इसके अलावा कोई और अमल कर दें, जादू बता दें मुझे, कि मुझे जो है वो वजीफा बता दें जिससे कुछ हो जाए, ठीक है, नहीं, अल्लाह से मोहब्बत मांगें और जो अल्लाह ताला ने करने के हुक्म दिए हैं ना वो करें। देखें अताअत जो है ना, अताअत, उससे मोहब्बत फिर पैदा होती है, अताअत से मोहब्बत पैदा होती है, तमाशों से मोहब्बत पैदा नहीं होती, धोखों से मोहब्बत पैदा नहीं होती, राइट, अताअत से मोहब्बत पैदा होती है, अताअत ही को बंदगी कहते हैं, अताअत ही को एक और लफ्ज़ था, ठीक है, ये हमारे करने का काम है, मोहब्बत अल्लाह डालता है जब हम अल्लाह की अताअत करते हैं, ठीक है, हमारा काम है बंदगी करना, अल्लाह का काम है कि हमारे दिल में मोहब्बत डालें, लेकिन हम अताअत किए बगैर मोहब्बत हासिल करने की जो कोशिश करते हैं ना, दिस इज गोइंग, क्या कहते हैं, जो जो तरीका है कोई काम करने का वो छोड़ करके हम कहते हैं नहीं नहीं मैं उसके बगैर ही, भाई जो हुक्म मिल रहा है उसको तुम करो, अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत डालेंगे। नहीं हम कहते हैं, नहीं हमने हुक्म नहीं, नहीं करना, हमने हुक्म पे अमल, हमने नसीहत को जो है वो नहीं सुनना, उसके बगैर हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तुम कर ही नहीं सकते अल्लाह से मोहब्बत जब तक तुम नसीहत पे को संजीदगी से ना लो, तुम नसीहत को जो है वो समझो नहीं, नसीहत के ऊपर अमल करने की कोशिश ना करो, यानी अतात करो, क्योंकि नसीहत के ऊपर अमल ही अता, ये दो अलग अलग चीजें नहीं कि नसीहत, अच्छा नसीहत की बात शुरू हो गई, अतात की बात खत्म हो गई, खत्म नहीं, अतात इज फॉलोइंग द नसीहत। ठीक है, ये इन्होंने क्या लिख दिया, वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह। ये इन्होंने सूरह आराफ की आयत यहाँ पे नकल कर दी है जिसके अंदर ये वाला वाक़या है कि जब ईमान वालों ने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमें हिदायत दी इस तरफ, यानी जन्नत की तरफ जाने की हिदायत हमें अल्लाह ने दी, वमा कुन्ना लिनहतदी, और हम तो नहीं होने वाले थे हिदायत के ऊपर, लौला अन हदाना अल्लाह, कि अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता। ये ईमान वाले कहेंगे जन्नत में जाते हुए, ठीक है, लकद जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक, फिर हमारा रसूल जो है ना वो यानी रब का रसूल जो है वो आएगा हक के साथ, वनुवद्दु वनुदु अंतिल कुमुल जन्नतु, और उनके उनको मुनादी सुनाई जाएगी, ये जो ईमान वाले जन्नत में जा रहे होंगे ना उनको ये मुनादी सुनाई जाएगी, ये ऐलान सुना जाएगा कि औरथ्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून, ये जन्नत तो तुम्हें विरसे में मिल गई है, ये जन्नत तो तुम्हारी विरासत बना दी गई है, तुम्हारी प्रॉपर्टी बना दी गई है, बिमा कुंतुम तअमलून, उन अमलों की वजह से जो तुम किया करते थे। देखें अल्लाह ताला ने लौटा दिया सारा क्रेडिट ईमान वालों को, देखो तुमने अच्छा काम किया ना इस वजह से तुम्हें जन्नत मिली, लेकिन ईमान वालों ने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि हमने अच्छे काम किए थे इस वजह से हमें जन्नत मिली। ठीक है, तो ये सोच जो है ना, ये फिक्रें, ये हमारे दीन की बुनियाद है, और फिर आमाल हम इसके ऊपर करते हैं, इसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाते हैं, इन बुनियादों के बगैर बिल्डिंग बनाएंगे तो उस बिल्डिंग की क्या क्या हकीकत है, क्या हैसियत है उसकी। बहरहाल फलम्मा अफला काल इलम यहदीनी रब्बी, कि जब वो डूब गया तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत नहीं देता मैं जरूर बिल जरूर गुमराहों की कौम में से हो जाता। फलम्मा अश्शम्स बाज़िग़तन, फिर उसके बाद उसने देखा सूरज को बाज़िग़तन, वही बाज़िग़तन जो चांद के लिए तुलू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो सूरज भी तो तुलू होता है, बल्कि सूरज का तुलू होना जरा ज्यादा ऑब्वियस होता है हमारे लिए, इसलिए कि सूरज दिन में तुलू होता है और दिन में हम जो है वो, अब तो मॉडर्न साइंस भी कहती है ना कि जी वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो दिन में जो है ना वो जाग आ जाती है। ठीक है, अब दिन में सोना आसान काम नहीं है, रात में जो जागते हैं कहते हैं दिन में हम नींद पूरी कर लेंगे, वो दिन में उनकी कोई नींद नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि दिन में तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, दिन में तो जागना पड़ता है, जब जागेंगे तो जाहिर है फिर सूरज भी नजर आएगा। ठीक है, सूरज का अंदाजा होगा, इवन अगर घर में रहने वाली औरत भी है तो उसको भी अंदाजा होता है कि अच्छा पहले जो है वो यहाँ की खिड़की के अंदर से लाइट आ रही थी, अब जो है वो यहाँ से लाइट आनी खत्म हो गई, अब वहां से लाइट आ रही है, अब दूसरी तरफ से लाइट आ रही है, ये जो बिन लाइट के दड़बे हैं ये तो अल्लाह का अजाब है जो कि हमें अब मिल गया है हमारे गुनाहों की वजह से, कि ऐसे घर बन गए जिनमें लाइट ही कोई नहीं आती, ये तो अल्लाह का अजाब है, दड़बों की शक्ल में भी अजाब आता है अल्लाह ताला, कि इंसान जो है ना फिर जानवरों की तरह दरबों में बंद कर दिए जाते हैं, ये दरबे वाले घर जो है ना ये अल्लाह का अज़ाब है, वरना तो नॉर्मल घर क्या होता था जिसके अंदर लाइटिंग आती थी, सूरज की लाइटिंग आती थी, बल्कि सहन भी होता था उसके अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे दुम दबा करके दौड़ेंगे तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो यही गिफ्ट होते हैं कि ऐसे घर मिलेंगे रहने के लिए जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती, तो कोई औरत अगर ये कहे नहीं मेरे घर में तो सूरज की रोशनी नहीं आती, तो वो भी अल्लाह ताला माफी मांगे, अल्लाह माफ कर दीजिए जिस अदाब के अंदर आपने मुझे मुब्तला किया हुआ है कि मुझे दड़बे जैसा घर मिला हुआ है, अल्लाह आप हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए ताकि इन दड़बों के अदाब से भी हम कम से कम बाहर निकल सकें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शम्स को देखा तुलू होता हुआ, ठीक है, तो उन्होंने कहा काला हादा रब्बी हादा अकबर, ये मेरा रब है ये तो सबसे बड़ा है, क्यों, इसलिए कि जो सूरज की रोशनी होती है ना वो फिर किसी चीज को नहीं छोड़ती, चांद की रोशनी, तो फिर एक दूधिया सी रोशनी होती है, उससे हर चीज लाइटन अप नहीं हो जाती, थोड़ा सा एक वो भी 14वीं का चांद होता है, तो फिर कहीं जाकर के जो है वो जरा ज्यादा रोशनी रात के वक्त होती है, वरना तो चांद पहले तारीख का चांद उसकी तो कोई रोशनी नहीं होती, दूसरे तारीख का चांद थोड़ी सी रोशनी बढ़ती है, तीसरे तारीख सूरज, तो हर सूरज ही 14वीं का सूरज होता है, कभी ये सुना फुल सूरज, फिर सूरज तो फुल ही होता है, चांद होता है वो छोटा छोटा होकर के निकलता है। ये अकबर है, आधा अकबर ये सबसे बड़ा है, सुना रहे हैं लोगों को, फलम्मा अफनत बस जब वो गायब हो गया, काला या कौमी ए मेरी कौम, मेरी कौम, ऊपर क्या कहा था कौम का, ऊपर देखें कौन सी 74th आयत में कहा था, इन्नी अराका व कौम का, मैं तो तुम्हें देखता हूं और तुम्हारी कौम को देखता हूं, फी ज़लाल मुबीन, वहां पर अपनी कौम को बाप की कौम बना दिया है, बाप तुम्हारी ये कौम है, मेरी कौम नहीं है ये, और यहाँ पर अपनी कौम, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, मैं तो बरी हूं उन चीजों से जिनसे जिनको तुमने शरीक ठहराया हुआ है अल्लाह ताला का, जिनको तुम जिनके जिनको तुम जो है वो अल्लाह ताला का शरीक ठहराते हो, मैं बरी हूं, मैं नहीं करता ये वाले काम, ठीक है, इन्नी वज्जह तू वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाती वल अर्ध हनीफ़ वमा अना मिनल मुशरिकीन। किसी ने यहाँ मैसेज लिखा है तो वो पहले पढ़ लेते हैं कि आई एम सो सॉरी जस्ट अ क्वेश्चन अ बिट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैन वुमेन प्रे इन अ डार्क रूम, इज इट रिकमेंडेड, कैन वुमेन प्रे इन अ डार्क रूम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत की जो सबसे ज्यादा सवाब वाली नमाज होती है वो उसके घर की सबसे अंदरूनी जो जगह होती है ना, वो जगह होती है जहां पे पढ़ने वाली नमाज सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के दर्जात पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइट ऑफ करके वहां पे पढ़ें या आप उसको डार्क करके पढ़ें, लेकिन मकसद इसका ये है कि औरत को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि वो छुप करके रहे, तो उसकी इबादत भी वो ज्यादा पसंदीदा है जो कि वो ऐसी जगह पे पढ़े करे जहां पे वो छुपी हुई हो, ठीक है, जन्नत में डोंट वरी, जिस वक्त भी मरेंगे ना, चाहे अभी मर गई या 2 घंटे के बाद मर गई या 2 साल के बाद मर गई या 20 साल के बाद मर गई, ज्यादा नहीं जीना, फिक्र ना करें, ये डार्क रूम और डार्क जिंदगी और ये सारी चीजें ज्यादा ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी, देर इज अ वेरी क्लोज एंड टू इट, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डार्कनेस से एक वहशत होती है ना कि यार क्या मुसीबत है, डार्कनेस अल्लाह को ज्यादा पसंद है, कोई बात नहीं जल्दी खत्म हो जाएगी ये दुनिया की जिंदगी, और फिर उसके बाद देर विल बी नो डार्कनेस, ना कबर में डार्कनेस होगी ना हशर में डार्कनेस होगी, और जन्नत के अंदर तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये पसंद फरमाया कि औरत जो है ना वो इनक्लोज जगह के ऊपर इबादत करे, और इबादत के अलावा भी जो है ना वो दिखाती है ना फिर अपने आप को तस्वीरें खींच खींच करके जो है वो अपने चाहे हिजाब में तस्वीरें खींच के अपनी डाल रही है इंटरनेट के ऊपर या बुर्के में तस्वीरें खींच करके इंटरनेट के ऊपर डाल रही है, नहीं, औरत, ये औरह से निकला ये लफ्ज, औरह का मतलब होता है जो चीज छुपाई जाए उसको औरह कहते हैं ना, ठीक है, सतर भी जिसको कहते हैं उर्दू जुबान के अंदर छुपाने वाली चीज को, तो ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ताला इसी के ऊपर औरत को जन्नत अता फरमाएंगे और मर्द को जो है वो धक्के खाने के लिए बाहर, हम तो मर्दों को एंटरटेनमेंट वाला समझते हैं ना, और यही मुसीबत है हमारी जहालत की, हमारी अकल की खराबी की, कि लड़कों को हमने एंटरटेनमेंट के लिए मखसूस कर दिया है, ठीक है, और हम हर वक्त प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि लड़के तो है ही एंटरटेनमेंट के लिए, मजे करने के लिए और चिल करने के लिए और गप्पे मारने के लिए, बाहर निकलने के लिए, ये करने के लिए, अल्लाह ताला को तो ये पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को तो ये पसंद नहीं है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा कि मर्द जो है वो तफरी करते रहे और औरत जो है वो उसको बंद करके रखें खाली, औरत को अल्लाह ताला ने औरत बनाया, छुपाने की चीज छुपने की चीज बनाया, लेकिन मर्द को तफरी वाली चीज नहीं बनाया, ये जुहला ने जो है वो मर्दों के लिए जो है वो तफरी को जायज करार दिया हुआ है, इस तरह की तफरी, इस तरह की तफरी जो कि मकसद हयात के बिल्कुल खिलाफ हो, तो उसके ऊपर तफरी भी करते हैं मर्द, तफरी भी करते हैं और जतलाते भी हैं ऐसा, यानी औरतों को टीज करते हैं कि देखो हम कितनी तफरी करके आए हैं, और वो जो है वो दीनदार बच्ची जो है वो घर के अंदर वो कुड़ती रहती है कि अच्छा ये सारी तफरी इन्हीं के लिए है, और मुझे जो है वो पता नहीं क्या इन्होंने मना करके रखा हुआ है। और शैतान आकर के फिर उसको कहता है यार ये जहन्नुम में जाए ये दीन, मुझे नहीं चाहिए ये वाला दीन जिसमें मर्द जो है वो तफरी करते रहे खाली और हमें जो है वो सड़ने के लिए घर के अंदर बंद रखें। ये अकल ये बिल्कुल रत्ती के खत्म हो जाने की, जो कहते हैं ना रत्त अकल की रत्ती भी नहीं बची, ये मर्दों का हाल है, ये मर्दों का हाल है। इसी वजह से अल्लाह का अजाब मर्दों पे ज्यादा होगा क्योंकि उनकी इन बदवकीफियों, बेवकूफी भी नहीं कहना चाहिए, बदवकूफियों की वजह से शैतान को मौका मिलता है, औरत को ताने देते हैं, औरत को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये जैसे कि वो कोई पता नहीं क्या जानवर है, वो कोई इंसान नहीं है जैसे वो, और मर्द को तो तफरी के लिए पैदा किया गया, कोई नहीं, तुम्हें तफरी के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, तुम्हें तो जिहाद के लिए पैदा किया है, तुम्हें तो दावत तबलीग की मेहनत के लिए पैदा किया है, तुम्हें तो माहौल बनाने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं पैदा किया जिसके अंदर कोई कोई वर्जिश का भी जो है वो अंसर ना हो, वर्जिश का भी कोई अंसर है भाई, खेल भी वर्जिश के लिए ताकि तुम्हारा बदन जो है वो और मजबूत हो सके और जो है वो तुम अल्लाह की खिदमत कर सको, अल्लाह की दीन की खिदमत कर सको। खेल कूद की ये हकीकत है, खेल कूद की ये हकीकत है। तफरी तो एक मेंटल चीज होती है जो कि किसी भी चीज में इंसान को मिल सकती है, खेल में भी तफरी मिल सकती है और उसके अलावा भी तफरी मिल सकती है, जायज तफरी जिसको कहते हैं। तो बिल्कुल आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ जिसको कहते हैं ना, हमारे यहाँ आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ, हमारी तो बुनियादें बिल्कुल है ही नहीं, और ऊपर से हमने जो है वो दीन की इमारत खड़ी करी हुई है, पता नहीं क्या क्या जो है तमाशे खड़े किए हुए। तो बहरहाल औरत को जो है वो अल्लाह ताला ने पसंद किया कि वो तो करें ना, मर्द जो है वो जाए जहन्नुम में, आप तो अपनी जन्नत बनाए ना कम से कम, ठीक है, उनकी खैर ख्वाही जरूर करें, ये तो खाली दिल के एक जज्बात का इजहार कर रहे हैं, वरना हम किसी को भी जन्नत जहन्नुम में कोर्स नहीं, वरना क्यों बैठ के कर रहे होते हैं दरस कुरान, कोई भी जहन्नुम में ना जाए, लेकिन आप दूसरों की फिक्र ना करें, आपने अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करें, जन्नत जरूर से। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाती वल अर्ध हनीफ़ा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो मुतवज्जह कर लिया है अपने वज्ह को, वज्ह कहते हैं चेहरा, वज्हिया लिल्लज़ी, अपने चेहरे को जो है वो उसके लिए जिसने के आसमानों और जमीन को बनाया। फतरा का जो लफ्ज है ना, ये यानी ये फतरा का जो लफ्ज है ये आसान जुबान में उसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जिसने के इनसाइड आउट बनाया, यानी सिर्फ आउटवर्डली नहीं बनाया, सिर्फ बाहर का खोल नहीं बना दिया, बाहर का स्ट्रक्चर नहीं बना दिया, और सिर्फ जो है वो अंदर की भी जो है ना वो कुछ कंपोनेंट्स ही बना दिए, बल्कि फितरत भी बनाई। फितरत, फितरत क्या चीज होती है? फितरत हड्डियों को नहीं कहते, फितरत जो है वो किसी लकड़ी और चूल्हे और पत्थर और मेटल की बनी हुई चीज को फितरत नहीं कहते। फितरत किस चीज को कहते हैं? मिजाज को, एक नॉन टेंजिबल चीज को, जिस चीज को आप हाथों से टच नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन की फितरत बनाई, ठीक है, और इसके अंदर हर चीज शामिल हो गई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बनाया, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाया, और फिर उसका मिजाज और सब कुछ बनाया था। बिल्कुल सही सही बनाया। इसका जो थानवी अब क्या तर्जुमा किया, बस ये लिखन के लफ्ज में देख लूँ कि वक्त भी खत्म हो गया और ये इस वक्त ये नजर नहीं आती क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया। बहरहाल यहाँ पे जो तर्जुमा है, जो कि हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह का तर्जुमा है, तो उसमें क्या है, यकसू होकर के बनाया, सबसे यकसू होकर के बनाया। ये फिर इंशाल्लाह आगे आ जाएगा तो वहां पे मजीद तफसील से बात करना है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं तो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला, ठीक है। मैं नहीं, मैं कोई ऑक्सीमोरॉन किस्म का चीज नहीं हूँ कि एक तरफ जो है वो अल्लाह को बड़ा भी कहूँ और दूसरी तरफ जो है वो अल्लाह ताला को नाकिस भी कहूँ, और अल्लाह ताला को जो है वो ऐसा भी कहूँ कि उसको जो है वो दूसरे पार्टनर्स की और दूसरे हेल्पर्स की जरूरत है। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। ये इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपनी कौम को कहा, वह हाज जो कौम हूँ, फिर कौम ने उनको लड्डू खिलाए, फिर कौम फूल के हार लेकर के आ गई और कौम ने ला करके फूल के हार इब्राहिम अलैहि सलाम के गले में डाल दिए। वह हाज जहू कौमुहू, ऐसे ही हुआ। नहीं, हाज जा का मतलब फूल के हार डालना नहीं है। जैसे अबू लहब ने अपने यानी नबी अलैहिस्सलाम के साथ किया था, यही मामला जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। ने कौम ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया, राइट, लड़ना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, काला अतुहाजूनी फिल्लाही वकद हदानी, ए मेरी कौम, क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो अल्लाह के एक होने में? और वो मुझको समझा चुका है ये वाली बात, मेरे मेरे सामने ये बात क्लियर हो चुकी है कि अल्लाह एक ही है, तुम इसके ऊपर मुझसे झगड़ा करते हो। ठीक है, अब इसकी तफसील आगे करेंगे इंशाल्लाह, ये क्या चक्कर था कि क्या वो क्यों झगड़ा कर रहे थे इसके ऊपर। फिर फरमाया कि वला अखाफु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैया, और वो मुझको वला अखाफु, मैं नहीं खौफ करता, मा तुशरिकून बिही, कि जो तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हो ना जिन चीजों को, मैं उनसे नहीं डरता। यानी तुम जो बुतों को अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हो, कहते हो कि ये बुत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें भू कर जाएंगे, तुम्हें काट के खा जाएंगे, तुम्हें जो है वो ऑल्टर के ऊपर सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, नहीं, मैं इनसे कोई नहीं डरता, ये इस काबिल नहीं है कि इनसे डरा जाए। इल्ला अय्यशा रब्बी शैया, सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने चाहा मेरे लिए, कि अल्लाह अगर चाहे कि तुम लोग मेरे ऊपर कब्जा कर, काबू को पा लो और तुम लोग मुझे काट वाट करके बोटियां वोटियां मेरी बनाना चाहो, अगर अल्लाह की मर्जी है तो वो अल्लाह की मर्जी है। ये नहीं कि बुतों ने मेरे मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ने चाहा कि मेरी बोटियां बना दी जाए तो मेरी बोटियां बन जाएंगी। जैसे नबी अलैहिस्सलाम को जो फिजिकल अजियतें काफिरों ने पहुंचाई, तो इसलिए कोई थोड़ी कि वो जो लात मनात जो थे वो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह की मर्जी थी कि नबी अलैहिस्सलाम को फिजिकल तकलीफ भी पहुंचे, ऊंट की ओजड़ी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे डाली जाए। ये तो नहीं हुआ कि क्योंकि भाई हक बात कर रहे हैं और जो है वो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं तो अब कोई तकलीफ नहीं होगी, अब कोई जो है वो दुनिया के अंदर अजियत नहीं पहुंचेगी। नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी, अजियत पहुंचती है। ठीक है, अब कोई समझे कि नहीं इनको क्यों अजियत पहुंच रही है, इसका मतलब ये गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है इन्होंने कोई गुनाह किया था इस वजह से इनको अजियत पहुंची है, इस वजह से इनका कोई काम अटक गया, इस वजह से इनका कोई काम खराब हो गया, तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, रिटार्डेडनेस है उसके दिमाग की कि वो ऐसे सोच रहा है। जैसे खैर छोड़ें इस बात को, अल्लाह वालों का हम तो तमाशे करते हैं ना अल्लाह वालों के लिए, अल्लाह वालों के तो सारे काम बन जाते हैं, अल्लाह वालों के तो बस जो है ना वो बस मखलूक जो है वो हाथ बांध के सामने खड़ी होती है, जी जनाब, जी हुजूर, आप हुक्म फरमाएं हम आपके लिए सारा काम कर देंगे, और कोई रुकावट नहीं आती उनके रास्ते में, सब उनके काम बनते चले जाते हैं, हमने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है असल में। तो जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं वो समझते हैं वाकई ऐसे ही है कि जो अल्लाह का काम करेगा उसका तो हर काम बन जाएगा, उसके तो रास्ते में कोई रुकावट आएगी ही नहीं, उसको तो कोई तकलीफ पहुंचेगी नहीं। अब ये प्रोपेगेंडा जो होता है ना हमारा, बेवकूफ़ी का प्रोपेगेंडा, ठीक है ना, अल्लाह वालों को हम चढ़ाते हैं ना, हम अल्लाह वालों को अल्लाह का दर्जा देते हैं, ठीक है, कि इनके तो हर काम बन जाता है, इनका तो हर चीज़ जो है वो आसान हो जाती है, इनके लिए तो हर चीज़ जो है ना वो हाथ बांधे बांधे इनके सामने खड़ी रहती है, ये हम प्रोपेगेंडा करते हैं। ये प्रोपेगेंडा सुनकर के बेवकूफ़ लोग इसको सच समझ लेते हैं, जब बेवकूफ़ लोग इसको सच समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है ये आप बता दें, ये हम आपसे पूछते हैं, जब बेवकूफ लोग इस बात को सच समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है, अब आप बताएं क्या होता है फिर उसके बाद। जी सवाल समझ में आ गया मेरा, ये जो फरमाया ना वला अखाफु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैया, इसकी तफसीर में आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बेवकूफ़ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर उनसे भी ज़्यादा जो बेवकूफ़ होते हैं वो उस प्रोपेगेंडे को सच समझ लेते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं। जी क्या इसका इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, टाइम का क्लास का टाइम खत्म हो गया है। बदगुमान हो जाते हैं। क्यों बदगुमान हो जाते हैं? यहाँ पे बदगुमान, आपने डायरेक्ट जंप मार दी, लेकिन क्यों बदगुमान होते हैं ये तो आपने बताया नहीं, मिसगाइड हो जाते हैं। अच्छा, दीन से दूर हो जाते हैं। यार जंप मार करके आप बात कर रहे हैं, आप बीच की बात बता ही नहीं रहे, बॉर्न कंफ्यूज मुस्लिम, हिम्मत हार देते हैं। नहीं, जब उनका काम नहीं होता तो उनसे बदगुमान हो जाते। बिल्कुल एग्जैक्ट ये होता है, ठीक है, कि जब अल्लाह वाले की जिंदगी में कोई तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उनका काम नहीं बनता, तो फिर ये बेवकूफ लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि ये अल्लाह वाले हैं ही नहीं, इनकी जिंदगी में ये मुश्किल क्यों आ गई, इनका काम जो है वो कैसे बनते बनते रह गया, राइट, इनको कैसे तकलीफ पहुंच गई, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह वाले नहीं है, ये कुछ कुछ गड़बड़ है इनके साथ, ये नहीं है अल्लाह, ये नेक नहीं है असल में। क्योंकि नेकों का तो हर काम बन जाता है, हमने तो यही सुना था प्रोपेगेंडे के अंदर कि नेकों का तो हर काम बन जाता है, नेकों के साथ तो है ना बस बस मखलूक बिछ जाती है, और नेकों की तो कोई मसला आता ही नहीं है, इनकी जिंदगी में जो ये मसला आ गया तो इसका मतलब तो ये है कि ये नेक हो ही नहीं सकते, इसका मतलब तो ये है कि नेक हो ही नहीं सकते। क्या समझ में आई बात? पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या लिख दिया। जब उनका काम नहीं होता तो उनसे बदगुमान हो जाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये कम अकली और कम इल्मी का नतीजा होता है, कम अकली और कम इल्मी का ये नतीजा होता है। वो नेकी का तराजू क्या उन्होंने बनाया हुआ है, किस बुनियाद पर नेकी को का फैसला कर रहे हैं? काम बन रहे हैं, काम बन रहे हैं तो नेक है, काम नहीं बन रहे तो नेक नहीं है। हालांकि ये तो स्टैंडर्ड है ही नहीं नेकी का। नेकी का क्या स्टैंडर्ड है? अताअत, अल्लाह की अताअत, राइट, गुनाह से बचना, नाफरमानी से बचना, अच्छे अखलाक का होना, बेशर्म और बेहया का ना होना, राइट, हया पाक दामनी का होना, ये है नेकी की अलामतें। ये तो नेकी का अलामत नहीं है कि बस जहां चले जा रहे हैं वहां पे जो है वो मखलूक बिछी चली जा रही है और हर काम बने चले जा रहे, ये तो नेकी का अलामत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बेवकूफी की बातों से हमें बचना चाहिए। हम खुद भी गुमराह हो रहे होते हैं, हम दूसरों को भी गुमराह कर रहे होते हैं इस तरह की बातें करके, अल्लाह वाले और पता नहीं क्या क्या उनको बना करके खुदा बनाया हुआ होता है, और फिर जो है ना वो हम खुद भी गुमराह हो रहे होते हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। हमें तौबा करनी चाहिए इस तरह की चीज़ों से, ठीक है। अल्लाह ताला बात के समझ अमल की तौफीक खुदा फरमाए, व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम।
Recording stopped.